कीर्तन में कुछ दम नहीं है, थोड़ा दिल से गाओ। सब लोग यहाँ वहां देख रहे हैं, क्यों? भगवान के नाम पे ध्यान रखो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दी होली नेम ऑफ द लॉर्ड, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावन बिहारी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, शील प्रभुपाद की, कार्तिक मास महा महोत्सव की मिठाई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
हरे रामा हरे रामा,
राम रामा हरे हरे,
राम रामा हरे हरे।
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण। तो आज हम कार्तिक महीने में यहाँ पर भगवान को संतुष्ट करने के लिए एकत्र हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि कलयुग में रहते हुए भगवान को संतुष्ट करना कितना मुश्किल है। कितनी बाधाएं आती। सबसे पहली बाधा क्या है? हमारा मन। वो हमेशा
बंदर की तरह एक डाली से दूसरे डाली पर और वहां से तीसरे और वहां से चार चौथे डाली पर भागते रहता है। इतना हमारा मन चंचल है। भक्त लोग साथ में बैठे हुए हैं फिर भी हमारा मन जो है किसी और देश में है। बार बार खींचना पड़ता है, आ जाओ पुकारो, फिर भी वो भागता है, फिर बार बार पुकारना पड़ता है। इस प्रकार से ऐसे कलयुग में अनंत बाधाएं हैं और उन सब बाधाओं के बीच में हमारे मन को कृष्ण के चरणों पर रखना है, तब जाकर हमारा जन्म जो है वो परिपूर्ण हो सकता है, नहीं तो हमारा जन्म जो है वो व्यर्थ जाएगा, सब बातों में बीत जाएगा, फिर कृष्ण कैसे मिलेंगे। इसलिए कलयुग के लोगों को बोनस के रूप में फिर कार्तिक महीना दिया है। चलो भाई आपका मन तो भटकते रहता ही है, कोई बात नहीं, एक डिस्काउंट ले लो आपके लिए, इस महीने में जो भी करोगे उसको हजारों गुना लाभ दे देंगे आपको। ये भगवान का कृपा है हमारे ऊपर। भगवान चाहते हैं कि हम सब लोग जो है ये बद्ध अवस्था से मुक्त होकर उनके धाम में बहुत जल्दी लौट के आए, और हम लोगों का मन यहाँ वहाँ बटा हुआ है। वो बुलाते हैं फिर बोलते हैं ठीक है दूसरा भी कर रहा हूँ कुछ, फिर बुलाते हैं फिर बोलते हैं ठीक है कुछ कर रहा हूँ, आता हूँ आता हूँ। तो फिर कहते कोई बात नहीं, जब आओगे तभी मैं 1000 गुना लाभ दूंगा आपको, तो आ तो जाओ कम से कम। उसको कहते हैं दामोदर मास। नहीं आते हो, चलो आ जाओ, जब आओगे तभी आपको 1000 गुना लाभ दूंगा, जो करोगे उसी से 1000 टाइम्स आपको मैं बेनिफिट दूंगा उसका। फिर भी हमको टाइम नहीं है, 24 घंटे में से कितना घंटा हम बिजनेस में देते हैं, धंधे में देते हैं, नौकरी में देते हैं, और जो समय भगवान को देते हैं वो भी बटा हुआ रहता है, डिवाइडेड अटेंशन, उसमें भी कुछ ना कुछ हमको खींच रहा है। बाकी अपने काम को पूरा अटेंशन, फुल टाइम कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन, हाँ उनके काम के लिए डिवाइडेड अटेंशन, इधर उधर मन भाग रहा है, इधर उधर मन भाग रहा है, तो कैसे होगा हमारा फिर, और क्या कर सकते भगवान, इतना कोई करता नहीं है। क्योंकि तो अपने धाम में भगवान बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में रहते हैं अपने भक्तों के साथ, जो एकाग्र होकर उनकी सेवा करते रहते हैं, और हमारे से 1000 गुना नंबर में वहाँ पर भक्त रहते हैं। यहाँ पर तो बहुत कम, जेल में कितने रहते हैं लोग, जेल में जितने रहते हैं उससे कई गुना लोग शहर में रहते हैं, है ना, प्रोपोर्शनेटली। तो भौतिक दुनिया में कितने लोग रहते हैं उससे कई गुना 1000 गुना लोग भगवान के धाम में रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि वहाँ बहुत कम लोग हैं, यहाँ ज़्यादा है, वहाँ मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ के लोगों को खींच रहे हैं वहाँ पर, ऐसा भी नहीं है, है ना। एडवर्टाइजमेंट करो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो एडवर्टाइजमेंट में, कैंपेनिंग करो थोड़ा सा, थोड़ा जनसंख्या यहाँ बढ़ जाए, वहाँ बहुत कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को हमें प्राप्त करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जरा सी भी नहीं है, हमारे वहां ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो हम पर प्रेम करते हैं, बिकॉज ही लव्स अस। और प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि प्रेम में क्या करते हैं उसकी कोई वजह नहीं होती है, वाई वी डू सम थिंग्स आउट ऑफ लव, देयर इज नो रीजन बियॉन्ड इट, कोई प्रेम कोई कारण नहीं होता है उसका, कि प्रेम के वश में आने वाला आदमी क्या करता है और क्यों करता है उसका कोई कारण नहीं होता है, और हृदय की बात है, भावनाओं की बात है। और हमारे दुनिया में ऐसे जो छोटा मोटा प्रेम हम कर लेते हैं उसके लिए कोई वजह नहीं होती है, जो शुद्ध प्रेम करते हैं भगवान का, जो भगवान जो शुद्ध प्रेम करते हैं, परिपूर्ण प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं, उसके लिए वजह कैसे हो सकती है, वो तो शुद्ध प्रेम है, वो कोई स्वार्थी प्रेम नहीं है। और उस प्रेम की वजह से करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है, और वो दया जो है ना वो प्रेम से भी आगे है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं सोचती है। जब करुणा आती है तो कोई योग्य है, कोई नहीं है, कोई पात्र है, कोई अपात्र है, कोई स्थान ठीक है, कोई स्थान ठीक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब दया के कारण किसको कुछ देना होता है तो भगवान कभी कुछ सोचते नहीं है, दे देते हैं तुरंत। पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान। कोई जगह ठीक है कि नहीं है, पवित्र है कि अपवित्र है, कोई लोग ठीक है कि नहीं है, कि योग्य है कि एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, सबको भूलकर भगवान अपनी कृपा को देते रहते हैं। और जितना व्यक्ति अधिक ज़रूरतमंद उसको अधिक कृपा मिलती है। मतलब हम लोगों को ज़रूरत है ये हमको समझ में नहीं आता है, जैसे कि मरीज को कितनी गहरी बीमारी है ये समझ में किसको आता है? डॉक्टर को। मरीज को बीमारी की जो इंटेंसिटी है, सीवियरिटी है, गंभीरता है, वो बताने के बाद मालूम पड़ती, लेकिन सबसे पहले मालूम पड़ती है डॉक्टर को। जैसे हमारी बेटी एक बार हॉस्पिटल में एडमिट थी तो हमारी पत्नी बहुत शांत थी और मैं बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि मैं रिपोर्ट सब पढ़ रहा था ना क्या हो रहा है रिपोर्ट में तो जिनको समझ में आ रहा है वो बहुत गंभीर हो जाते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मज़े में रहते हैं। वैसे कुछ हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति, हमको भगवान की कृपा की कितनी ज़रूरत है ये हम जानते नहीं हैं। तो हमारे गुरु महाराज संतजन जो है वो हमको देखते हैं, समझ जाते हैं कि इनको बहुत ज़रूरत है। संतजन समझते हैं तो भगवान कितने समझते होंगे, इसलिए वो अपार करुणा के साथ में हम पर कृपा करते हैं। इसलिए कम से कम जब साथ में आते ना तो सब कुछ भूल के भगवान को पुकारना चाहिए। तो अकेले कैसे पुकारेंगे? अकेले तो मन तो पहले ही ऐसा इतना क्या कहते हैं ना, वश हो चुका है, सोल्ड आउट टू माया, इतना माया को बेच, अपने आप को बेच चुका है वो, तो अकेले में क्या पुकारेगा वो? अकेले में तो बाकी सब पुकारते हैं उसको तो फिर उसको सुनता है उनकी, लेकिन साथ में आते हैं तो भक्तों का एक बल प्राप्त होता है, और वो बल प्राप्त होने से बहुत आसानी से हम पुकार सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। ये भक्तों का संग जो है ना ये बहुत अमूल्य है, ये बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है, उसमें भी एक दुर्लभ वस्तु है वो संतों का संग, भक्तों का संग। बहुत आप ही अपने सोचे, हम लोग दीक्षा लिया है, सब कुछ कर चुके हैं, बहुत साल भी बीत चुके हैं, लेकिन कितनी बार हफ्ते में सत्संग होता है? 7 दिन में एक बार होता है शायद, किसी का भाग्य उसको रोज मिलता है, लेकिन आमतौर पे अपना काम धंधा नौकरी में बहुत समय बीतता है, बहुत कम समय मिलता है। तो कितना हमको इस अमूल्य वस्तु को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी मिलता है ना। हमारे पिताजी, हमारा SSC का अपना स्कूल का रिजल्ट लगने के बाद में श्रीखंड पूरी और जलेबी घर में बनाते थे, साल में एक बार अपने हाथ से बनाते सब बच्चों के लिए रिजल्ट लगने के बाद। तो कितना दुर्लभ है वो, साल में एक बार, साल भर पढ़ाई करने के बाद भी फिर एंड में हमको पिताजी के हाथ की बनी हुई घी काली जलेबी और गुलाब जामुन और हलवा श्रीखंड पूड़ी मिलेगा। तो रोज मिलेंगे तो फिर उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा ना। तो वैसे भक्तों का संग है, वो घर पे भी हम रहते हैं एक साथ में, सब भक्त हैं, लेकिन वो भक्त की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। एक माता, एक पिता, एक बच्चा, एक बेटा, इसके जैसे व्यवहार करते रहते हैं आम तौर पर। परिवार जब भक्त बनता है तो उसका पर्पस क्या होता है कि घर पे ही हमको संग मिले 24 आवर्स, लेकिन 24 आवर्स घर पे संग मिलने के लिए भक्तों जैसा व्यवहार घर पे होना चाहिए। भक्तों जैसा व्यवहार भक्त लोग घर पे नहीं करेंगे तो घर पे सत्संग नहीं मिलेगा उनको, सत्संग के लिए बाहर जाना होगा उनको। जैसे घर में अगर माँ खाना नहीं बनाती है तो होटल में जा खाना पड़ेगा वैसे ही हिसाब किताब है। इसलिए केवल तिलक लगा के आदमी भक्त नहीं बनता है, उसका व्यवहार भक्त जैसा होना चाहिए, उसकी सोच भक्त जैसे होनी चाहिए। जब विचार भक्त जैसे होंगे तो आचार भक्त जैसे होगा, तो फिर व्यवहार बनेगा। बहुत विचार करने वाली बात है ये। जब तक हम अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में देखते हैं और पति पति को पति के रूप में देखते हैं, पत्नी पति को पति के रूप में देखती है, तब तक वो भौतिक रहता है सब कुछ। जब पत्नी अपने पति को वैष्णव के रूप में देखती है और पति अपने पत्नी को वैष्णव के रूप में देखता है और दोनों मिलकर बच्चों को वैष्णव के रूप में देखते हैं तो सत्संग होता है, तो हमारा जीवन सफल है। और दिन के 24 घंटे में हम अगर 2 घंटा ऐसा कर पाते हैं, 2 घंटा हम सत्संग प्राप्त करते हैं, और 22 घंटा फिर ऐसे ही बीत जाता है। और दिन में 4 घंटा ऐसे कर पाते हैं तो 4 घंटे का सत्संग है, और 24 घंटा ऐसे ही विचार में रहते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरे पति नहीं है, ये भगवान की मुझे दी हुई देन है 24 घंटा संग के लिए। कृष्णास गिफ्ट फॉर मी फॉर 24 आवर सत्संग। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज हमारे संप्रदाय में एकदम परम विरक्त माने गए हैं, उनके इतने विरक्त कोई नहीं हुए अभी के समय पर। तो उनके शिष्य जो हैं ठाकुर भक्ति सिद्धांत, वो भी परम विरक्त निकले, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो गौर किशोर बाबा जी के संग में एक व्यक्ति था ब्रह्मचारी, तो एक दिन उसने विवाह करने का तय कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रह्मचारी आदमी विवाह कर सकता है, लेकिन जब उसके ब्रह्मचारी भाइयों को पता चला कि ये विवाह करने वाला है, तो उसको एकदम ऐसा कंडेम करने लगे, वो उसकी निंदा करने लगे, क्या अरे ब्रह्मचारी तो अच्छा विवाह करने जा रहा है, पतित हो रहा है, पतन हो रहा है उसका। तो ये बात गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के पास पहुंचे, जो परम विरक्त वायु संत हैं, उनको उम्मीद थी कि अपने गुरु जी को बताएंगे तो जरूर उनको मना करेंगे, वो जरूर प्रचार करेंगे उसको, नहीं करना है आपको ये, ब्रह्मचारी आश्रम में रहना है। तो जब गुरु जी को बताया उम्मीद से कि ये कम से कम अपने मुंह से डांटेंगे उसको, तो गुरु जी हाथ उठाकर नाचने लगे, कितनी खुशी की बात है, तुम लोग तो कुछ घंटे सत्संग करते हो, उसको वैष्णवी पत्नी के रूप में मिल रही है, अभी वो 24 घंटा संग में रहेगा। तुमको आश्चर्य हुआ गुरु आज क्यों बोल रहे हैं। फिर उनके शिष्य जो ठाकुर भक्त सिद्धांत जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं सच्चा गृहस्थ वैष्णव के रूप में बन पाता तो मैं 100 साधियां कर चुका होता, लेकिन मुझमें इतनी कैपेसिटी नहीं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी सन्यासी बना हूं। कहने का मतलब क्या है, गृहस्थ आश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें से कोई श्रेष्ठ है कोई नीच नहीं है। जिस आश्रम में भक्तों का संग हृदय से लिया जाता है वही श्रेष्ठ आश्रम है। अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, वहाँ पर संग ले रहे हैं भक्तों का, तो वो आपके लिए श्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम है और परिवार के सदस्यों के साथ में आपका संग हो रहा है वैष्णव लेवल पर, वैष्णव के स्तर पर, तो आपका गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि चारों आश्रम का पर्पज एक ही है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मया सृष्टम मैंने निर्माण किया है इसका, भगवान कहते हैं चारों वर्ण, और एक ही उसका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। इसमें ना ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ है, ना गृहस्थ नीच है, ना सन्यासी श्रेष्ठ है, ना वानप्रस्थ श्रेष्ठ है। जब तक आप उसका उद्देश्य पूरा कर रहे हो, अपने आप में सब श्रेष्ठ हैं। इसलिए नंद बाबा, यशोदा माई, रोहिणी मैया, इनका जीवन धन्य है, क्योंकि उनके घर में सब भक्त हैं। गुरु महाराज हमेशा बताते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ फैमिली अफेयर, इट्स नॉट अ इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था नहीं है वहाँ पर, संस्था यहाँ पर होती है, वहाँ पर केवल पारिवारिक भावना होती है। सब कोई ना कोई रिश्तेदार हैं किसी के किसी के, एवरीबडी इज कनेक्टेड विथ ईच अदर विथ लव एंड डिवोशन एंड रिलेशन। सब लोग केवल एक ही बात सोचते हैं, कैसे कृष्ण की सेवा करें, कोई अपनी नहीं सोचता है, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, कोई सोचता नहीं। सब लोग दिन रात कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें, कैसे उसको खुशी दें, कैसे उसकी सेवा में और कुछ साधन जोड़ दें, कैसे लोगों को जुटाएं उसके अंदर, सोच विचार ही उसके बारे में दिन रात। गाय का दूध भी निकाल रहे हैं तो उसके गीत गा रहे हैं, गोबर भी साफ कर रहे हैं तो भी उसी के गुणगान कर रहे हैं, माता मंथन भी कर रही है दही का इतने बड़े मटके में, तो भी जो कल की लीला हुई थी उसका गीत बना के गा रहे हैं। वैसे तो वहाँ पर गीत बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ का हर एक वाक्य ही गीत है, हर एक कदम नृत्य है, वहाँ पर कोई गद्य होता ही नहीं है, गद्य मतलब प्रोज होता ही नहीं है, वहाँ पर जो भी है पद्य ही है, काव्य ही, सब कुछ बात भी काव्य में करते हैं, तो उनके लिए गीत बनाने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो गीत ही है। तो ऐसा ही एक गीत मैया गा रही है, हाँ बहुत सारे कंगन पहने हुए हैं, बहुत सारे फूल मालाएं पहनी हुई है, कानों में कुंडल पहना हुआ है, गले में मालाएं पहनी हुई है, हाँ, और जो कंगन पहने हुए हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर, जब हाथ आगे पीछे दोनों हो रहे हैं तो छुम 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 छन 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 बज रहा है, उसी के ध्वनि के उसी के ताल पर सुंदर गीत गाया जा रहा है, माता मग्न होकर कृष्ण का ही ध्यान कर रही है, कृष्ण के लिए मंथन करके दही मंथन करके मक्खन बना रही है, और इतने में कृष्ण भाग भाग के आते हैं। पारिवारिक अफेयर है, याद रखना, हाँ, भूलना नहीं उस थीम को। तो कृष्ण आते हैं और वो पता है ना, बच्चे को हर चीज़ बोलनी नहीं पड़ती, पल्लू खींचता है तो माता समझ जाती है इसको दूध पीना है, तुरंत वो मंथन करना बंद कर देती है, उसको गोद में लेती है और स्तनपान करने लगती है। फिर चिंतन शुरू हुआ, और जीवन में क्या चाहिए, कृष्ण को स्तनपान करा रही हूँ, वो मेरे गोद में है, और जीवन में और कोई प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है, परिपूर्ण अवस्था है। साधु भी ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, साक्षात परमात्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण उनके गोद में है, मग्न होकर दूध पिला रहे हैं, वो भी ध्यान में है, पीने वाला भी ध्यान में है सब लोग आनंद ले रहे हैं। ऐसी परिपूर्ण अवस्था में अचानक कोई बदबू आती है, तो क्या हुआ, कुछ दूध जो है पद्मगंधा मतलब कमल की खुशबू वाला दूध जो है वो चूल्हे पर रखा था ताकि उसके आगे मिठाई संदेश बर्फी पेड़ा बनाया जाए, इसी के लिए इसको गोद में रखा है, उसी की सेवा के लिए रखा गया है। तो जब वो उबलने लगता है, उसका दूध उबल के अग्नि में गिरने लगता है, तो वो तुरंत बच्चे को नीचे रखती है और भागते किचन में कि नहीं नहीं वो इतना सारा दूध जो मैंने इसी तरह से रखा है वो खराब हो जाएगा तो इसके लिए मिठाई कैसे बनेगी। तो उसी की सेवा के उद्देश्य से उसी को नीचे रखकर किचन में भागती है। तो फिर हमारे नंदलाला को गुस्सा आता है, जब मैं आता हूँ 100% अटेंशन मुझे ही चाहिए, नथिंग एल्स शुड बी देयर, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, और माता मुझे छोड़ के चली गई, उसको बंद कर दो जो तुम्हारे हाथ में है खिलौना, उसको बंद कर दो तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा, नहीं तो वो तुम्हारा ध्यान खींचता रहेगा बार बार। तो वो कह रहा है कि माता ने ऐसा किया, क्यों किया, मैं माता को सबक सिखाऊंगा और जो बड़ा मंत्री था उसको मटके से निकाला और जोर से दे मारा उस मटके के ऊपर, मटका पूरा फूट गया, उतने कितना सा छास रहा, इतना बड़ा मटका जो उसके भी ऊंचा था उसके अंदर कितना छास होगा, उसके ऊपर मक्खन भी तैर रहा है, उसका सार जो है पूरा फैलता था, पूरा कमरे में फैल जाता है पूरा, तुरंत जो मक्खन उस पर तैर रहा था वो पूरा खा लेता है उसको, और मक्खन खाने के बाद में उसको याद आती है अभी तो दंड मिलेगा डर लगता है उसको। तो फिर वो मक्खन जो सॉरी जो छास फैला हुआ है उसी में से धीरे धीरे निकल जाता है, तो जहाँ तक छास फैला हुआ है वहाँ तो पैर छास में है, जहाँ छास खत्म हो जाता है वहाँ पर छास के पैर के निशान तैयार होते हैं, और फिर वो आगे आगे जाता है अगले कमरे में जाता है, देखता है कि ऊंचे कुछ लटके हुए हैं अच्छे अच्छे बर्तन, उसमें मक्खन रखा है, उसमें दही रखा है। तो फिर वो खिड़की से सभी दोस्तों को बुला लेता है, और दोस्त लोग बंदरों को भी लेके आते हैं, बड़ी सेना फौज तैयार होती है, कुछ बंदर और कुछ दोस्त, और फिर उखल रखी रहती है, उखल के ऊपर पैर रखे वो चढ़ते हैं और मक्खन को नीचे उतारते हैं, और दोनों हाथ से खुद भी खाते हैं दूसरों को भी खिलाते हैं, वो कोई दो हाथ डाल रहा है, एक हाथ से खुद खा रहा है दूसरे का हाथ दूसरे को खिला रहा है, और हमारे कन्हैया जी एक हाथ से खुद खा रहे हैं एक हाथ से बंदर को खिला रहे हैं, ऐसा है। सब लोग एकदम फिर दोबारा मग्न हो गए, सब भूल गए क्या चल रहा है आसमान, मैं और मक्खन, मक्खन और मैं, बस मेरे साथी देने वाला और लेने वाला और खिलाने वाला और मक्खन और दही और छास, आनंद लेके फिर मग्न हो गए। उतने में मैया आ गई किचन से, देखिए तो क्या इतना बड़ा मेहनत से बनाया हुआ, कितने देर से गीत गाते हुए मंथन बनाया हुआ, मंथन किया हुआ जो छास है वो सब मटका पुटका टूट के सब फैल गया है, मक्खन भी गायब है, और उसमें से नन्हे नन्हे कदम निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं दूसरे कमरे के अंदर। बोला अभी तो इस लाला को तो दंड देना ही है, वो तो दंड हो गया है, क्यों, क्योंकि बार बार कंप्लेंट आती रहती है, अलग प्रकार की गोपियां हैं, सब चचेरी है ममेरी है, बहुत सारी गोपियां हैं, चाचा की बहू है कोई मामा की बहू है, सब आके कंप्लेंट करते हैं कि रोज आके हमारे यहां पर माखन चोरी करता है, पता नहीं इसके अंदर से क्या प्रकाश निकलता है, अंधेरे में रखते फिर भी दिखाई पड़ता है उसको, क्योंकि पहले तो गहने पहन के आते थे, तो कहा कि इसके गहने से कुछ बुरा प्रकाश आता है, तो गहना कम कर दिया, फिर भी जाके अंधेरे में चोरी करता है, नहीं इसके शरीर से कोई प्रकाश निकलता है, वो सब दिखाई पड़ता है। फिर ऐसे बहुत शरारते करता है कि जब पकड़ा जाए तो बहुत मन्नतें मांगता है, बहुत बहुत लाल बहुत प्रेम से बात करता है, मैया छोड़ो भी, तो कुछ कुछ गोपियाँ बहुत तेज रहती है, नहीं नहीं अब तुमको तो पकड़ के, क्योंकि मैया के पास जाते कंप्लेंट करते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि तुम लोग तो ऐसे ही मेरे कान्हा के खिलाफ हमेशा कंप्लेंट करते रहते हो, एक बार तो रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ ना उसको, हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो, कुछ तो प्रूफ तो तुम्हारे पास है नहीं। जब प्रूफ के साथ पकड़ के आते हैं उसको तो ये भेस बदल लेता है, और जब घर पहुंचते हैं तो उसी गोपी का लड़का बन जाता है, मतलब कृष्ण को पकड़ के हाथ में मक्खन मुंह में मक्खन ऐसा पकड़ा हुआ है रंगे हाथ, और वो बोल रहा है देखो गोपी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा, पछताओगे बाद में। बोले क्या पछताओगी, पछताना तो तुझे है आज, मैं तुझे ले जाऊंगी मैया के पास। तो बहुत रो रहा है, बहुत नाटक कर रहा है, और जब अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसी गोपी का बेटा बन जाता है, और वो कहती है अरे यशोदा सुना तुमने, आओ आज दर्शन करो लाला के, तुम्हारे लाला के दर्शन करो, रंगे हाथ माखन हाथ और मुंह में पकड़ा हुआ है, लो इसको, ऐसा आगे करते देखते हो तो उसका ही बच्चा है। तो मैया कहती है अच्छा कर रहे तुम, हाँ आज अपने बेटे को लेके आओगी, कल अपने पिता पति को लेके आओगी कि लो मेरा बच्चा करके, थोड़ी तो शर्म किया करो, थोड़ी तो अकल यूज किया करो, अपने बच्चे को लेकर आकर मेरे बच्चे को बोल रही हो। तो फिर वो एकदम शर्मा जाती है, अरे बाप रे तो गड़बड़ हो गया, कहते ये तो मेरे कृष्ण तो मेरे हाथ में था, अभी क्या हो गया सडन चेंज हो गया, तो उसको लेकर तू यहाँ से यहाँ पर कहाँ आ गया, तू तो खेल रहा था वहाँ पर, मेरे हाथ में कैसे आ गया। तो फिर शर्मा के चले जाती है, और थोड़ी देर के बाद में वापस कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। तो मैंने कहा था ना पछताओगे, पहले छोड़ दिया होते तो अच्छा होता, आज का जो इतना सारा एम्बेरसमेंट था वो संकोच बच गया होता। और कभी कभी पकड़ लेते हैं उसको, एक बार क्या हुआ उसको ऐसे पकड़ा कि दोनों हाथ इधर तक मक्खन में, मुंह में भी मक्खन लगा हुआ है, तो गोपी उसको पीछे से पकड़ लेती है, कहते आज पकड़ा तुमको आज नहीं छोड़ेंगे। तो कहते मैं मक्खन नहीं खाया आपका, बोले हाथ में लगा है सब कुछ, हाथ यहां पर फैला हुआ है। बोलते नहीं क्या हुआ, जब मैं यहां से गुजर रहा था तो बहुत सारी चींटियां हजारों की संख्या में तुम्हारे मटके में घुसी हुई थी, मैंने कहा तुमने इतना प्रेम से मक्खन बनाया है, इतना मेहनत किया है, हाँ कितने गाय को चराना, कितना उसको क्या करना, धोना प्रेम से रखना, उसको गोबर साफ करना, कितनी मेहनत करनी पड़ती, और फिर उसके बाद में वो दही जमाना, फिर उसके बाद में मंथन करना, फिर उसके बाद में मक्खन को संभालना, वो संभाल कर रखना, कितना मेहनत है इसके अंदर, और मैं देख रहा हूँ कि हजारों चींटियां अंदर घुस रही हैं, तो तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे मक्खन को बचाने के लिए मैं आया, और चींटियों को निकालने लगा सब चींटियों को, और चींटियों को निकालने लगा तो कुछ चींटियां मेरे हाथ पे चढ़ गई, फिर भी मैं बहुत एकाग्रता से सारी चींटियों को हटा रहा था, तो कुछ चींटियां ऐसे हाथ से चढ़ के कंधे से गले से मेरे गाल पे आ गई, और गाल से मेरे होठों पे आ गई, मुझे बहुत गुदगुदी होने लगी। तो मैंने वो जो मेरा हाथ, जो हाथ से मैं एक एक चींटी को निकाल रहा था, वो हाथ से मैंने फिर ऐसे हाथ घुमाया, वो मैंने हाथ घुमाया चींटियों को निकालने के लिए, तो कुछ माखन मेरे होठों पे लग गया, तो मैंने एक हाथ जीभ निकाल के चाट लिया, मैंने मक्खन नहीं खाया आपका, तो उधर लगा था ऐसे ही अनायास उसको मैंने चाट लिया, लेकिन मैंने आपका मक्खन नहीं खाया, देखो आपकी सेवा कर रहा हूँ मैं, ऐसे मीठी 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 बातें करके फिर उनका गुस्सा जो है वो ठंडा कर देता था। और फिर भी वो जाती थी कंप्लेंट करने के लिए, तो मैया मानती नहीं थी, और ये परेशानियां ये कंप्लेंट सुन सुनकर यशोदा मैया भी परेशान हो गई थी। आज उसने अपनी आंखों से देखा कि जो गोपियां कहती थी वह सच ही कहती थी, तुम बड़े चोर हो, मेरा लड़का बहुत चोर है, आज उसको दंड देना ही पड़ेगा। तो फिर वो देखती है पैर जा रहे हैं उस कमरे में, उसके पहले डंडा उठाती है, एक थोड़ी सी डंडी, बड़ी नहीं छोटी सी, बालक को जरा डराने के लिए, और धीरे धीरे हल्के हल्के पाँव से उस कमरे में जाती है जहाँ से नन्हे नहरे छाछ वाले पैर जा रहे हैं, और जाके क्या देखती है पूरी मंडली जो है एकदम मग्न होकर बैठी हुई, एकदम दोनों हाथ से भर भर कर चाट चाट के मक्खन खिला रहे हैं इसको, बंदर को, सहे दोस्तों को, इतना प्रेम से आदान प्रदान हो रहा है। उतने में बंदर देख लेते हैं, सबसे पहले बंदर पहचान लेते कि पीछे से मैया आ रही है, सबकी पीट रहते ना उसके ऊपर, बंदर की मुंह रहता है, जैसे बंदर मुंह बना के भाग जाते हैं, सबको पता चलता है कि मैया पीछे खड़ी है, सब लोग भाग जाते हैं, तो उसके पीछे मैया भागने लगती है, रुक जा रुक जा रुक जा, भाग रहे भाग रहे भाग रहे, रुक जा रुक जा रुक जा। सब संत लोग देवता लोग आकाश से देख रहे हैं, देख कितना बढ़िया सीन है, हाँ इतने बढ़िया बड़े तपस्या लोग करते हैं, योगा योगी लोग ध्यानी लोग सब लोग तपस्या करते हैं इसको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। उनके हाथों के पैरों के जितने नाखून हैं उसमें से लाखों किरण निकलते हैं प्रकाश के, उसमें से एक किरण भी पकड़ नहीं पाते वो, इतना तपस्या जन्म जन्मांतर तक करने के बाद भी। और देखो मैया डंडा लेके पीछे भाग रही है और वो डर के मारे भाग रहा है, यहाँ तपस्या करके प्राप्त नहीं हो रहे, वहां पर डर के मारे भाग रहे अपनी मैया के भय से। फिर कुछ देर बाद मैया थक जाती है, तो मैया का थकान देखकर ये अपने आप को बंदे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये एग्रीज टू गेट कॉट, चलो पकड़ लेती है उसको और बहुत डांटती है, तो ये डरा डरा चेहरा करते हैं, बहुत डरा हुआ चेहरा करते हैं, तो डंडा फेंक देती है, लगे ज़्यादा डर ना जाए। हाँ वो तो बहुत होशियार लड़का है, वो तो इतना अच्छा नाटक कर लेता है कि वो मैया डंडा फेंक देती नीचे, बोलते आज तुमने बड़ा अपराध किया है, अब तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है कि तुम नंबर वन के चोर हो, इसलिए आज आपको बांध देंगे, और आपके इस अपराध में सारे बच्चे तो भाग गए हैं, लेकिन उखल वही है जिसने आपको सहायता किया था इस अपराध में, तो उखल को और आपको दोनों को बांध देते हैं, आओ सखियों सब लोग दोरी लेके आओ। वहां पर दोरी कैसे होती है, गाय के पीछे के दो पैर को बांधने के लिए दोरी होती है, जब दूध को निकालते हैं गाय के, तो भी गाय कभी कभी टोंग करके एक साइड किक दे देती है, तो दूध भी गिरता है और दूध निकलने वाला भी गिर जाता है, इसलिए वो दूध निकालने के पहले दोनों पीछे के पैर बांध देते हैं, तो दोरी वो छोटी छोटी होती है, तो वो दोरी लेके आते हैं, जोड़ देते हैं उसको और बांधने का प्रयास करते हैं, तो पेट पर जैसे गांठ मारने का समय आता है तो दो उंगली छोटी हो जाती है, तो घर की सारी डोरियां जो है, सारी डोरियां यहां वहां नहीं देखना है आपको, आपको खाली कथा सुनना है, डोरियों को बांध के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के घर की सारी रस्सियां जो है खत्म हो जाती, फिर सखियों को बुलाते हैं आपके घर की रस्सियां लेके आओ, फिर सब अपने अपने घर में जितना स्टॉक है, बहुत सारे लाखों का है ना, तो बहुत लाखों टुकड़े हैं डोरिये के, सबके पैर को बांधना है, सब डोरी लेके आते हैं, ऐसे कहते हैं कि उस दिन नंद बाबा के घर में रस्सियों का उत्सव हो गया, जितनी भी रस्सियां थी वृंदगांव में सब इकट्ठा हो गई, सब बांध दिया गया और सब गोल गोल घुमा दिया, जब गांठ बांधने का समय आता है दो उंगलियां छोटी हो जाती, तो माता परेशान हो जाती है, क्या चमत्कार है, इतनी दोरियां लाई फिर भी जब गांठ बांधने का समय आता है तो दो उंगली छोटी हो जाती। तो आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान की सेवा में दो चीज की जरूरत होती है, एक है प्रयास, हमारी मेहनत, दिलो जान से मेहनत करना, और जब हम हमारा 100% मेहनत करते हैं तो फिर कृपा जब मिलती है तो हमारी सेवा सफल हो जाती है। तो पहला क्या है, प्रयास, हमारा प्रयास सबसे पहला होना चाहिए, आवर एफर्ट्स, हमारी मेहनत, जब हमारी मेहनत हम लोग दिलो जान से एकाग्रता से 100% कर देते हैं तो फिर कृपा आ जाती है, तो हमारी मेहनत की एक उंगली और कृपा की दूसरी उंगली जब मिल जाती है तो फिर गांठ बन सकती है। तो मैया का ये जो अचरज है ये देखकर लाला को दया आ गई कि चलो बन जाते हैं, तो मैया ने बहुत मेहनत किया है, यहाँ तक कि इतना मेहनत किया है कि कपाल से कुछ पसीने के बिंदु भी आ रहे हैं, इतनी मेहनत करके ऊपर से आश्चर्य में भी वो कन्फ्यूज हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर भगवान बन जाते हैं, और जब बन जाते तो कहते बहुत काम है मुझे अभी, बहुत तुमने समय ले लिया मेरा, पढ़े रहो यहाँ पर, अभी कोई आपको कंसेशन नहीं मिलेगा। तो सभी गोपियाँ बोल रही नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो, तुम सब चुप रहो, मैं जानती हूँ क्या करना है मेरे लाला के लिए, चले जाओ सब लोग। सब लोग चले जाते रोते रोते, और दोस्त लोग फिर जो भागे गए भाग गए थे बहुत देर से वो आ जाते हैं, उसमें भी कई ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जो है जोर जोर से हंस रहा है, अच्छा हो गया तुम्हारा, अच्छा हो गया, रोज जब हम सब लोग मिलकर माखन चोरी करते हैं तो ये तू भाग जाता है और हम लोग पकड़ पकड़े जाते हैं और दंड हम लोग को भुगना पड़ता है, आज पहली बार तुम पकड़े गए हो, कितनी अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। तो कान्हा को बहुत तकलीफ होती है, अरे तुम लोग तो मेरे दोस्त हो, मेरे हाथ से माखन खाते हो राज में ताने दे रहे हो। दूसरा एक ग्रुप आता है, वो बहुत रोते हैं बेचारे, कन्हैया तुम्हारे वजह से हमको माखन मिलता है और तुम्हें आज बंद गए, हम लोग भाग गए तुम बंद गए। सब लोग अपने अपने हाथ से वो गांठ छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैयानी बांधी हुई गांठ जो है बच्चों के द्वारा नहीं सुलझती है। वो तो वात्सल्य से बंधी हुई गांठ है ना, वो फ्रेंड लोगों से नहीं कैसे निकलेगी, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। और उसके बाद में बलराम भैया आते हैं, दाऊ भैया, वो कहते हैं अरे वो किसने बांधा? बोले मैया ने बांधा। अच्छा क्यों बांधा? ऐसे ऐसे हुआ। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं मैया से बात करूँगा, मतलब इज अ बिग एम्बेसडर यू नो, सिफारिश लेके जाएंगे मैया के पास, मैया किचन में काम कर रही है। बोले मैया तुम जानती हो कन्हैया कौन है? कौन है? वो तो परब्रह्म है, परमात्मा है, सारे सृष्टि का निर्माण करता है, वो सारे ब्रह्मांड उससे निकलते हैं, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही मत्स्य अवतार है, वही कुर्म है, वही राम है, वही परशुराम है, तुम जानते नहीं हो? तुमने उसको बांध के रखा है, तुमको पता नहीं है? बोले अच्छा मेरा बेटा परब्रह्म है, परमात्मा है। अच्छा तो तुम कौन हो? तो मैं तो अनंत शेष हूं, मैं शेष क्षीर सागर के अंदर शेष शैया बनता हूं उसकी, और उस पर वो लेटता है और पैरों में चरणी चरणों में लक्ष्मी देवी चरण दबाती रहती। अच्छा डंडा उठाती है, कहते भागो यहां से, सब अवतारों को मेरे ही घर पे होना था क्या? हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सब सब तुम लोग सब मिलके मेरे ही घर पे पैदा हो गए, सारे अवतार दशा अवतार जो मेरे घर पे पैदा हो गए, भागो यहां से। तो अपना सारा जो बलराम जी का अवतार लेके भाग जाता है दाऊ जी भैया, अभी क्या करें, कोई उपाय नहीं, मैया तो मान नहीं रही है। मैया का प्रेम जो वात्सल्य इतना गहरा है कि सच्चाई को वो सुन सुनकर भी पहचान नहीं पा रही है, इनका प्रेम जो है वो इतना गहरा है कि वो नहीं पहचान पाती कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है। बोले मेरा बालक है, उद्दंड है, उसको दंड देना, उसको शासन करना, उसको अच्छे संस्कृति को देना मेरा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी बके ये लोग। फिर वो कन्हैया देख लेता है कि कुछ भी बातें तो मान नहीं रही है मैया, अभी और कुछ ऐसा शरारत करूंगा कि उसको याद रखेंगी वो। तो वो उसको फिर वो क्या करते, सब बालक जो है चले जाते हैं, अकेला रह जाता है। तो उखल को लेकर घुटने के बल चलते 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 घर से निकल के पूरे आंगन को पार करके एकदम सड़क पे आता है, और ये गोल गोल घुमाते घुमाते जाता है तो दो पेड़ों के बीच में अटक जाता है। तो दो पेड़ों पेड़ों को खींच लेता है तो दो पेड़ जो है वो गिर जाते हैं, धड़ाड़ करके आवाज आती है और उसमें से दो देवता निकलते हैं और वो गीत गाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। कुछ कुछ बच्चे जो है ना पेड़ के पीछे छुप छुप कर देख रहे हैं कि बड़े तेज वाले कुबुकट पहने हुए, अलंकार पहने हुए, लंबे चौड़े बड़े देवता जो है ये अपने छोटे से कन्हैया फ्रेंड की जो है तारीफ कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। तो प्रार्थना करके फिर अदृश्य हो जाते हैं, अपने अपने धाम पे चले जाते हैं। उतने में नंद महाराज खेत में कुछ कर रहे थे, भाग भाग के आते हैं, अरे क्या हुआ इसको, किसने मारा, ऐसे बांध के रखा है, दो पेड़ गिरे हैं, एक आध पेड़ उस पर गिरता तो क्या होता? तो पूछा किसने बांधा तुमको? तो मैया ने बांधा। अच्छा तो तुम्हें मैया भाग भाग के आती है, अरे कहाँ से आवाज आई, क्या हुआ, अरे रे उसको लेने जाती है। तो ये मैया से हटकर बाबा की गोद में आता है, मैं नहीं जाऊंगा उसके गोद में, तुम्हें जो बांधा था देखो कितना बड़ा पेड़ गिर गया, अगर मुझ पे गिरता तो क्या होता? तो बोले अरे तू मैया के पास नहीं जाएगा तो सुबह तुझे लोरी कौन सुनाएगा? तो कहते तू बाबा। अच्छा लोरी मैं सुनाऊंगा, फिर माखन कौन खिलाएगा? तू बाबा। स्नान कौन कराएगा? तू बाबा। जो भी पूछता है बाबा वो सब तू बाबा, जो भी मैया करती है सारे काम तुझे करने पड़ेंगे अभी। और बहुत देर तक बनाने की कोशिश करते हैं पिताजी, अलग अलग काम जो मैया करती है उसकी याद दिला दिला के उसको कोशिश करते हैं, लेकिन कन्हैया जो है फिक्स्ड है कि मैया के पास नहीं जाना है, उसने मुझे बांध दिया, मैं भी उसको सबक सिखाऊंगा। तो मैया सोचती अरे पूरी सेवा ही खत्म हो गई, एक भी सेवा लेने को तैयार नहीं है। फिर पारिवारिक भावना आ गई, उनका जीवन ही उसके लिए है, उनका जो अस्तित्व है वो सब उसके लिए है, उसकी सेवा के बिना जीवन में क्या अर्थ है? जीवत शव समान, अगर कृष्ण का प्रेम नहीं है, कृष्ण की सेवा नहीं है, तो हमारा जीवन जो है वो शव के समान है, मुर्दे के समान है। मुर्दा कहाँ जाता है? शमशान घाट में। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे शमशान बन के घूम रहे हैं इधर उधर। जिसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है वो जीवत शव सम्मान है। तो मैया सोच रही है अभी ऐसा जीवन जी के भी फायदा क्या है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। बड़ी दुखी होकर चले जाती है वहां से, मतलब जाने को लगती है। तो बाबा कहते हैं देखो मैया नाराज हो गई, अभी जा रही है रो रो के। तुरंत मैया की ओर मैया करके भागता है। मैं तुरंत उसको गोद में ले लेती हूं। सब लोग गीत गाते हैं, इतना सुंदर लीला है भगवान का। हाँ, कितनी सुंदर लीला है। सब जगह प्रेम ही प्रेम है। बांधने में भी प्रेम है, मक्खन बनाने में भी प्रेम है, स्तनपान करने में भी प्रेम है, नीचे रखकर रसोई में जाकर उस पात्र को नीचे उतारने में भी प्रेम है, डंडा दिखाने में भी प्रेम है, हाँ बांधने में भी प्रेम है। और जब बड़ा बालक बोल रहा है कि मैं कौन हूँ और वो कौन है, फिर भी जो डांटा जा रहा है उसमें भी प्रेम है। क्योंकि इनका इनके प्रेम के अंदर कहीं ये जानकारी नहीं है कि ये भगवान है, सृष्टि के रचयिता है, जन्म मृत्यु के कारण है, सृष्टि को चलाने वाले हैं, प्रलय भी इनसे होता है, इसका किधर भी ज्ञान नहीं है। खाली मेरा प्यारा सा बालक है, यही ज्ञान है इसके अंदर। इसलिए भगवान उनके हाथ से बंधने को तैयार हो जाते हैं। सब दुनिया को बांध के रखते हैं वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में, हाँ सब दुनिया को चलाते हैं, लेकिन मैया के हाथ से बंधे जा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ लव, केवल प्रेम के कारण। और ये लीला कल के दिन हुई थी, कल की तिथि में ये लीला हुई थी, दीपावली के दिन। इसको हम दीपावली मनाते हैं उस दिन। और उस एक दिन के कारण ही सारे महीना भर दीपदान होता है इस लीला के लिए। क्योंकि कल के दिन भगवान को रस्सी से पेट से बांध दिया गया था, दाम उदर, दाम यानी दोरी, उदर यानी पेट। जिसको प्रेम से दोरी से पेट से बांध दिया गया था उसका नाम है दामोदर बाल कृष्ण। और ऐसी ही सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं जो हैं, बाल लीलाएं, वो इस महीने में हुई है। अभी आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन उन्होंने गिरिराज को पूजन किया, गिरिराज की परिक्रमा दिया। 7 साल के बालक ने सब ब्रजवासियों को लेके सबसे पहले गिरिराज की परिक्रमा आज भगवान ने लगाई, फर्स्ट परिक्रमा। और फिर स्वयं गिरिराज बने और स्वयं पर्वत के समान सभी भोगों को खा लिया उन्होंने। अनियोर पुकारा, फिर इंद्र ने वर्षा किया, फिर परसों के दिन उन्होंने उठाया उसको, चतुर्थी से एकादशी तक, फिर एकादशी को नीचे रखा। फिर इसके इस महीने के कुछ दिन के बाद में उनको बड़ी गायों का भार दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी गई गोपाष्टमी के दिन। छोटे बालकों बछड़ों को लेकर घूमते थे पहले ना, जब बड़े हो गए 7 साल के, तो 5 साल के एक्चुअली, 5 साल की उम्र में, उनके 5 साल की उम्र में, क्योंकि कृष्ण का ऐसा था कि कृष्ण हर साल 1.5 गुना बढ़ते थे। तो जब 5 साल के हुए तो 7.5 साल के हो गए वो आमतौर के ना, इसलिए 5 साल के उम्र जब पूरा हो गया उनका, तो उनको उस अष्टमी के दिन, कार्तिक शुद्ध अष्टमी के दिन, उनको बड़ी गाय का जिम्मेदारी दिया गया। और फिर बड़े गायों को लेके दूर दूर वनों में जाने लगे और लीला करने लगे गौचारण की। बहुत सुंदर सुंदर लीला है इसके महीने में, खास करके बाल लीलाएं भगवान ने इस महीने में बाल लीलाएं की हैं, सबके दिल को लुभाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो मुझे जानते हैं कि मैं भगवान हूँ, जो मेरे लिए तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब करने पर भी मैं प्राप्त हो जाऊँगा कोई गारंटी नहीं है इसकी। मैं तो केवल प्रेम में फंसने वाला व्यक्ति हूँ। जो प्रेम करता है वो ज्ञानी ना हो, कर्मकांडी ना हो, तपस्वी ना हो, ध्यानी ना हो, फिर भी मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ, उसका हो जाता हूँ। ये दिखाने के लिए ये भगवान लीला करते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा है। जब प्रेम पूर्वक भक्ति हम करते हैं तो भगवान हमारे हो जाते हैं। पर भगवान को प्राप्त वाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही अपने आप हमारे लिए प्राप्त हो जाते हैं, जो दौड़ के आते हैं। हाँ, प्रेम ऐसी शक्ति है, जब तक वो प्रेम नहीं है हमारा जीवन शुष्क है, इट्स अ ड्राई बोरिंग लाइफ। जब भगवान का प्रीति नहीं होती है तो हमारा जीवन जो है एक तो शुष्क होता है और एक हमें नीचे 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 लेके जाता है, धन की ओर, शरीर की भोग की ओर, प्रसिद्धि की ओर, अलग अलग प्रकार के भोगों की ओर लिप्त कर देता है, और लिप्त होने के बाद में दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। इसलिए भगवान के प्रेम के लिए हमको प्रयास करना चाहिए और उस प्रेम को प्राप्त करना है। और कोई भी रास्ता नहीं है इस कलयुग में, वो है भगवान का नाम पुकारना है। चाहे हमें तपस्या करने की कोई शक्ति न हो, न हमारे पास कोई ज्ञान हो, न हमारे पास कोई अवसाधन हो, कोई पांडित्य हो, या कोई कर्मकांड करने में हम एक्सपर्ट हों, ऐसा नहीं भी होगा तो भी अगर उसका नाम हम पुकारते हैं हृदय से, प्रेम से, जितना भी समय पुकारते हैं, एकाग्रता से पुकारते हैं, मन लगा के पुकारते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, तो दूर नहीं है, वो बहुत पास में है। लेकिन जब मन नहीं लगता है और मन में अहंकार होता है तो बहुत दूर चले जाते हैं। जब नम्रता होती है और एकाग्रता होती है तो बहुत ही पास में है वो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। संकट में हो या सुख में हो या दुख में हो, बीमारी में हो या आरोग्य में हो, सभी अवस्था में हमारे साथ पास में है वो, बस प्रेम से पुकारने की देरी है। तो प्रेम से पुकारते हैं तो बहुत ही पास में है, हम सबको प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी व्यक्ति इस नाम को प्रेम से पुकारता है, भगवान उसके हो जाते हैं। इसलिए आइए हम लोग संकोच न करें, कंजूसी न करें, और हृदय से भगवान को पुकारें। क्योंकि अगर अभी हम लोग हृदय से भगवान को पुकारने में चूक गए तो गाड़ी भी छूट जाएगी आपकी, फिर दोबारा कब मौका मिलेगा, फिर कब मनुष्य बनेंगे, फिर कब संग मिलेगा, कौन याद करेगा, ये किसने देखा है, हु नोज। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, जीवन बहुत छोटा है। और मराठी में कहते हैं व्याप, व्याप मंजे गए, बहुत सारा हमारा इधर काम रखा है हमने अपने आप के बना के, वो हमको निगल लेता है, अपना काम, अपना संसार, अपना क्या कहते हैं प्रपंच, बहुत सारा चीज़ है जो हमको घेर लेता है। और ये मौका हमने अगर गंवा दिया तो हमको पता नहीं कि अगली बार दोबारा मौका कब मिलेगा। इसलिए मौका है तो अभी है, कल भी नहीं है, आज और अभी यही हमारे हाथ में है। घड़ी हमको याद दे रही है कि एक घंटा और बीत गया है, हाँ 8 बज गए, और एक बार बजेगा एक घंटे के बाद, फिर याद करेगा कि 9 बज गए, हाँ फिर क्या होगा, अगले दिन डेट बदली हो जाएगी, फिर दोबारा घंटी बजेगी। क्या बता रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं किसी के लिए रुकने वाला नहीं हूँ, आई डोंट वेट फॉर एनीबडी, मेरी गति से, स्थिरता से, स्टडीली आई एम गोइंग अहेड, ऐसे वक्त हमको बता रहा है। और वक्त कौन है, जो भक्त नहीं है उसके लिए वक्त ही वो चीज़ है, भगवान वक्त बनकर आ जाते हैं। कालोस्मी, जो मुझ पर प्रेम से नहीं देखते हैं, वक्त बनकर मैं उनके पास आता हूँ और उनका सब कुछ छीन लेता हूँ, उनका यौवन, उनकी आरोग्य, उनका धन, सब कुछ मैं छीन लेता हूँ। और जो मुझ पर प्रेम करते हैं उनके लिए खुद आता हूँ, उनको लेकर अपने धाम चला जाता हूँ। तो नहीं अगर हम लोग करेंगे तो घंटी बजती रहेगी और एक दिन यमदूत आकर हमको ले जाएंगे, तो क्यों उनका दर्शन करना है। प्रेम से उनको पकारेंगे तो वो आएंगे स्वयं, अपने विष्णु दूतों को भेजेंगे और हमको अपने धाम में ले जाएंगे, और कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा का कष्ट नहीं होगा, कोई हुद हुद का तूफान नहीं रहेगा, फिर कतरीना तूफान नहीं रहेगा, फिर आंधी नहीं रहेगी, हाँ कोई धूप नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा। इससे हमको छूटना है, ये कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये हमको कष्ट देने वाली वस्तुएं हैं सब, इससे हमको मुक्त होना है और इसी जन्म में इसके लिए प्रयास करना है। अगला जन्म का इंतज़ार मत करना आप लोग, इसी जन्म में इसका प्रयत्न करना है, फॉर्मूला इसी जन्म में अपनाना है और इसी जन्म के अंत में भगवान को मिलना है। नो मोर नेक्स्ट लाइफ, उसके बारे में शड़ी मत करो आप, ये सोचो कि एक ही लाइफ है आपके पास, आज का समय सबसे कीमती है और इस कीमती समय में उनको पुकार लो, फिर वो अपने हो जाएंगे, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।